लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे असाध्य रोगियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उन्हें आवश्यक शारीरिक और आध्यात्मिक देखभाल, सहयोग और समर्थन मिल सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओ, हम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लाउदातो सी मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो की चर्चा सुन रहे हैं। हमने लाउदातो सी के दूसरे अध्याय सृष्टि का सुसमाचार की चर्चा करते हुए अपने पिछले प्रसारण के अंतिम भाग में कहा कि जब प्रकृति को हम केवल लाभ और प्राप्ति करने के रूप में देखते तो इसका समाज में एक गंभीर परिणाम होता है। शक्ति ही अधिकार के दृष्टिकोण ने एक घोर असमानता, अन्याय और मानवता के विरुद्ध हिंसा को जन्म दिया है। चूंकि संसाधन पहले आने वाले या सबसे शक्तिशालियों के हाथों में पड़ जाते हैं और इस भांति विजेता अपने में सब कुछ ले लेता है। इस सिद्धांत के ठीक विपरीत हम यीशु के द्वारा प्रस्तावित आदर्शों एकता, न्याय, भ्रातृत्व और शांति को पाते हैं। श्रोताओ, विश्व का अंतिम लक्ष्य हमारे लिए ईश्वर के पूर्णता को प्राप्त करना है, जो पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे लिए पहले ही दिया गया है, जो सारी चीजों की परिपूर्णता है। यहाँ हम अन्य प्राणियों पर मनुष्य के हर अत्याचारी और गैर जिम्मेदार वर्चस्व को खारिज करने के लिए एक और तर्क को जोड़ सकते हैं। दूसरे प्राणियों के जीवन का लक्ष्य हमारे ऊपर निहित नहीं है, बल्कि सारे प्राणी हमारे संग उस केंद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो ईश्वर हैं। जीवन की उस परिपूर्णता में पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त सारी चीजों को आलोकित करते हुए आलिंगन करते हैं। मानव जो अपने में विवेक और प्रेम से पोषित किया गया है और जो ईश्वरीय पूर्णता की ओर आकर्षित किया जाता है, पृथ्वी के सारे जीवों को सृष्टिकर्ता की ओर अग्रसर करने हेतु बुलाया गया है। श्रोताओ, हमारे इस बात पर जोर देना कि हर मानव ईश्वर के रूप में बनाया गया है, हमें इस बात को नजरअंदाज करने हेतु अग्रसर ना करें कि हर प्राणी का अपना एक उद्देश्य है। कोई भी अपने में व्यर्थ नहीं है। पूरी भौतिक दुनिया ईश्वर के प्रेम का जिक्र करती है, उनका प्रेम जो हमारे लिए अनंत है। मिट्टी, पानी और पर्वत, हर चीज, वे जैसे भी हैं, उनमें ईश्वर का प्रेम स्पर्श बना है। ईश्वर के संग हमारा मित्रतापूर्ण संबंध का इतिहास सदैव विशेष स्थानों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में एक गहरा अर्थ रखता है। हम उन स्थानों की याद करते हैं और उन स्थानों की ओर लौटना और उन्हें पुनः याद करना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। कोई जो पहाड़ी की तराइयों में पला बढ़ा है या नालों के किनारे बैठकर जल पिया है या अपने अहाते से बाहर पड़ोस के चौराहों में खेला है, उन स्थानों की ओर जाना हमारे लिए वह अवसर होता है जहां हम अपने सच्चे रूप, जीवन की वास्तविकता का एहसास करते हैं। ईश्वर ने एक मूल्यवान किताब लिखी है, उसके अक्षर में असंख्य नई चीजें बनाई गई हैं, जिन्हें हम विश्व में पाते हैं। कनाडा के धर्माध्यक्ष गण इसे सही रूप में इंगित कराते हुए कहते हैं कि कोई भी जंतु अपने में ईश्वर को प्रस्तुत करने से अलग नहीं है। मनोरम दृश्यों से लेकर सूक्ष्मतम जीवों तक प्रकृति अपने में निरंतर आश्चर्य और विस्मय का एक स्रोत है। जापान के धर्माध्यक्षों ने अपनी ओर से यह विचारणीय अवलोकन को प्रस्तुत किया है। हर एक जीव के द्वारा उसके द्वारा गाए जाने वाले सजीव गीत का एहसास करना ईश्वरीय प्रेम और आशा में आनंदमय जीवन यापन करना है। सृष्टि पर यह मनन ध्यान करना हमें इस बात की खोज करने में मदद करती है कि हर एक चीज द्वारा ईश्वर हमें अपनी शिक्षा प्रदान करने की चाह रखते हैं। क्योंकि एक विश्वासी के लिए सृष्टि पर चिंतन करना एक संदेश को सुनना है, एक विरोधाभाव और शांत आवाज को सुनना। हम यह कह सकते हैं कि तथा कथित रहस्योद्घाटन के साथ साथ, जिसे हम पवित्र धर्म ग्रंथ में पाते हैं, हमारे लिए एक दिव्य प्रकटीकरण है, जिसे हम सूर्य की किरणों में पाते और रात्रि के आने में देखते हैं। हम इस अभिव्यंजना पर ध्यान दें। हम इन सारी चीजों के द्वारा अपने संबंधों को दूसरे जीवों के संग देखना सीखते हैं। मैं विश्व को अभिव्यक्त करने में अपने को व्यक्त करता हूँ। दुनिया की पवित्रता को समझने के अपने प्रयास में मैं स्वयं अपने को खोजता हूँ। श्रोताओं, ब्रह्मांड अपने बहुआयामी संबंधों में एक पूर्णता है जो ईश्वर की अटूट समृद्धि को व्यक्त करती है। संत थॉमस अक्विनस उचित रूप में इस बहुआयामी रूप और विभिन्नता की ओर इंगित कराते हुए कहते हैं, यह प्रथम व्यक्ति की चाह से उत्पन्न होती जो चाहती थी कि ईश्वरीय अच्छाई के प्रतिनिधित्व में एक व्यक्ति जो चाहता था उसे दूसरे द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। क्योंकि ईश्वर की अच्छाई को किसी एक प्राणी के द्वारा उचित रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, अतः हमें चीजों की विभिन्नताओं को समझने की जरूरत है जो असंख्य संबंधों में अपने को व्यक्त करते हैं। हम हर एक प्राणी की महत्वपूर्णता को बेहतर रूप में तब समझते हैं जब हम ईश्वरीय पूर्ण योजना के स्वरूप में उसके बारे में विचार मंथन करते हैं। जैसे कि धर्म शिक्षा हमें बतलाती है, ईश्वर की चाह यही है कि हम एक दूसरे प्राणी में आत्मनिर्भर रहें। सूर्य और चंद्रमा, देवदार और छोटा पुष्प, बाज और गौरैया, उनकी अनगिनत विविधताओं और असमानताओं का नजारा हमें बतलाती है कि कोई भी प्राणी अपने में आत्मनिर्भरता को धारण नहीं करता है। जीव जंतु का अस्तित्व सिर्फ एक दूसरे के संग निर्भरता में बना रहता है। वे एक दूसरे में और दूसरों की सेवा में अपनी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। जब हम ईश्वर के स्वरूप को दुनिया में व्याप्त चीजों में देखते हैं, तो उनके द्वारा बनाई गई सारी चीजों के लिए हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति महिमा गान के भाव प्रस्फुटित होते और हम सारी चीजों के संग मिलकर उनकी आराधना करते हैं। हम इस अद्वितीय मनोभाव को असीसी के संत फ्रांसिस के गान में व्यक्त पाते हैं, तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, तेरे सभी जीव जंतुओं के लिए, विशेषकर भाई सूर्य के लिए जो हमारे लिए प्रभात है और जिसके द्वारा तू हमें ज्योति प्रदान करता है, और वह अपने में सुंदर और चमकीला तथा शानदार है जो तेरी छवि को धारण करता है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरी प्रशंसा हो मेरे प्रभु, बहन चंद्रमा और तारों के द्वारा स्वर्ग में तूने उनकी रचना की जो सुंदर, कीमती और मनोरम है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, बहन वायु के द्वारा और हवा के माध्यम बादलों और शांतिमय वातावरण और सभी प्रकार के जलवायु में, जिनके द्वारा तू अपने सारे जीव जंतुओं को पोषण प्रदान करता है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, जल रूपी बहन के द्वारा जो हमारे लिए अति उपयोगी है, जो नम्र, मूल्यवान और अपने में शुद्ध है। तेरी स्तुति हो मेरे प्रभु, भाई आग के द्वारा, जिसके द्वारा तू रात्रि को प्रज्वलित करता है और वह अपने में सुंदर और चंचल है, जो पुष्ट और मजबूत है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र लौदातो सी, मेरे प्रभु तेरी स्तुति हो पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
तेरी जय जय हो, तेरी जय हो, जय हो, पीस। वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने समग्र निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। 5 मार्च को निरस्त्रीकरण एवं अप्रसाद जागरूकता का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। पोप ने 5 मार्च को एक्स पर लिखा, आधुनिक संघर्ष नए और अधिक परिष्कृत हथियारों के उत्पादन के घातक परिणामों को उजागर करते हैं। हमें समग्र निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जहां मौत के साधन फैलते हैं वहां शांति संभव नहीं हो सकती। पोप ने रविवार को निरस्त्रीकरण दिवस की याद दिलाते हुए कहा था, सैन्य व्यय पर कितने संसाधन बर्बाद होते हैं, जो दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति के कारण बढ़ता ही जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह समझेगा कि निरस्त्रीकरण सबसे पहले एक कर्तव्य है। निरस्त्रीकरण एक नैतिक कर्तव्य है। प्रेरित एक प्रायश्चित विभाग ने प्रायश्चित पर अपने वार्षिक आंतरिक कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें दंडमोचन से लेकर पाप स्वीकार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच संबंधों तक के विषयों पर व्याख्यान और चर्चा के साथ 1 सप्ताह लंबा कोर्स शामिल है। इन दिनों प्रायश्चित और क्षमाशीलता पर 1 सप्ताह का कोर्स जारी है, जिसका उद्देश्य है नवनियुक्त पुरोहितों एवं साथ ही सेमिनरी छात्रों को, जो जल्द ही पुरोहित अभिषेक प्राप्त करेंगे, पुनर्मिलन के संस्कार पर चिंतन और गहन प्रशिक्षण का अवसर देना। पाठ्यक्रम के आयोजकों ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्राथमिकता कलीसिया की समझ और दया के अंतर्गत प्रस्तुत ठोस और जटिल मामलों के समाधान को दी जाएगी। प्रत्येक सत्र के बाद प्रतिभागियों के बीच बहस होगी। शुक्रवार 8 मार्च को जैसे ही कोर्स समाप्त होगा, प्रतिभागी पोप से मुलाकात करेंगे। कोर्स का उद्घाटन सोमवार दोपहर को प्रेरितिक प्रायश्चित विभाग के प्रमुख कार्डिनल माउरो पियांचेन्सा ने किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत आगामी 2025 जयंती वर्ष पर चिंतन करते हुए की और इस बात पर जोर दिया कि हालांकि इस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, पुनर्मिलन का पहलू इस आयोजन के केंद्र में है, जबकि मीडिया सबसे पहले उन लाखों तीर्थयात्रियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो जुबली के लिए रोम आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस उत्सव के लिए प्रायश्चित का आयाम भी उतना ही आवश्यक है। हालांकि कार्डिनल ने चेतावनी दी कि इससे पहले कि क्षमा की रोशनी दुनिया में चमके, इससे हम प्रत्येक में चमकना चाहिए। उन्होंने कहा, वास्तव में हमारे व्यक्तिगत नवीनीकरण के बिना कलीसिया और दुनिया के नवीनीकरण की आशा करना अकल्पनीय होगा। कार्डिनल ने कलीसिया के सुधार के लिए पश्चाताप के महत्व को भी बतलाया। रांची महाधर्म प्रांत के कार्तिक महिला संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन 3 मार्च को उत्सुलान इंटर कॉलेज सभागार में सम्पन्न हुआ। रांची महाधर्म प्रांत के फादर प्रफुल्ल बड़ा की रिपोर्ट अनुसार सम्मेलन में रांची महाधर्म प्रांत की महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया और अपने अनुभव एवं विचारों का आदान प्रदान किया। सम्मेलन के दौरान महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विषय महिलाएं शांति की बीज बोती और वार्तालाप को बढ़ावा देती हैं के साथ समाज में उनकी भूमिका और महत्व पर चर्चा की। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए आवाज बुलंद किया। सम्मेलन की मुख्य अतिथि एवं वक्ता डॉक्टर सिस्टर मेरी ग्रेस टोप्पो ने अपने संबोधन में कहा कि हर महिला को छोटी छोटी बातों में शांति का बीज बोना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने अधिकार एवं न्याय को पाने के लिए आपसी बातचीत को माध्यम बनाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष श्रीमती रंजीता हेम्ब्रम ने बतलाया कि उनके जीवन में उनकी मां ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बतलाया कि उनकी मां की मेहनत, सहानुभूति और उनके समर्पण ने ही उन्हें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद दिया। श्रीमती हेम्ब्रम आगे कहती हैं, मेरी मां ने मुझे जिम्मेदारी, साहस और संघर्ष का महत्व सिखलाया। उनका प्रेरणादायक उदाहरण हमेशा मेरे साथ रहता है। उनके समर्पण, संघर्ष और सफलता के लिए सलामी देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मां के साथ उनका संबंध गहरा और प्रेमपूर्ण है, जिसने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का बल प्रदान किया है। माँ का मार्गदर्शन अपने भाई बहनों पर भी अच्छा रहा है, जिसका प्रभाव यह हुआ है कि एक भाई इंग्लैंड में डॉक्टर पद पर रहकर अपनी सेवा दे रहे हैं। अपना अनुभव साझा करते हुए श्रीमती रंजीता ने कहा कि सास के साथ भी उनका रिश्ता माँ बेटी की तरह है। डॉक्टर ईरा अनुपा ने कहा, महिलाओं और लड़कियों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहना और ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और लड़कियों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है और उन्हें इससे प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं को नियमित चेकअप, स्वस्थ आहार, व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व के बारे में बतलाते हुए जागरूक रहने की सलाह दी। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि खुद की देखभाल करना महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का माध्यम है। उन्होंने सेक्स और इससे संबंधित दुष्परिणाम के बारे में भी सजग किया। इस अवसर पर कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने भी महिलाओं को प्रेरित किया और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की सलाह दी। सम्मेलन के अंत में सभी महिलाओं ने संकल्प लिया कि वे समाज में अपनी स्थिति मजबूत करेंगी और महिलाओं के हित में काम करेंगी। सम्मेलन को सफल बनाने में सिस्टर दोरोथी कुल्लू, श्रीमती लिली बारला, श्रीमती मार्था टोप्पो, श्रीमती फ्रांसिस्का खलखो, श्रीमती सुशीला तिग्गा, श्रीमती शोभा बारला का अहम योगदान रहा। बुर्किना फासो के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष बिशप लॉरेंट ने देश में हुए भीषण आतंकवादी हमले पर चर्चा की, जिसमें करीब 170 लोगों की मौत हो गई है, और कहा कि जो लोग हमें गोलियां देते हैं, हम उन्हें शांति, विश्वास और आशा प्रदान करते हैं। बिशप लॉरेंट का कहना है कि बुर्किना फासो के लोगों को परेशान करने वाली भयानक घटनाओं के बावजूद ख्रिस्ती समुदाय उन्हें प्यार और विश्वास के साथ जवाब देने में यकीन करते हैं। डोरी के धर्माध्यक्ष ने वैटिकन न्यूज के साथ अपने हालिया साक्षात्कार में इस परिपेक्ष की पेशकश की, क्योंकि अफ्रीकी देश लगातार आतंकवाद और हिंसा में कई लोगों की जान गंवाने के कारण सुर्खियों में बना हुआ है। एक सरकारी वकील ने रविवार को खबर दी जिसमें गवाहों से तीनों गांवों पर हमला करने वालों को ढूंढने में मदद करने की अपील की गई है। अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि किस आतंकवादी समूह ने हमलों को अंजाम दिया है। 25 फरवरी को दो पूजा स्थलों पर हमले हुए थे। पूर्वी बुर्किना फासो के नात्याबोनी में एक मस्जिद में सुबह लगभग 5 बजे प्रार्थना के दौरान दर्जनों मुसलमान मारे गए थे, जब हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। दूसरा हमला उसके कुछ ही घंटों बाद देश के उत्तरी भाग में स्थित इसकेन नामक गांव के एक कातिक गिरजाघर में हुआ, जिसमें 15 लोग मारे गए और कई घायल हुए। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।